ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मंगलापुरी में एक विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा शुरू किए गए मेगा स्वच्छता अभियान श्रमदान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। राजधानी में मॉनसून से पहले बुनियादी संरचना को दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज राष्ट्रीय राजधानी में साइकिलिंग और निशानेबाजी की स्पर्धाएं आयोजित की गयी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है।
कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे।
7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे।
इस बीच कल होने वाली इस ड्रिल से पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर कल के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मंगलापुरी में एक विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बीआरपीएल द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक सब स्टेशन राजधानी के विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह नया सब स्टेशन जीआईएस तकनीक से लैस है, जो पारंपरिक एआईएस प्रणाली की तुलना में 35% जमीन की बचत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य राजधानी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता हर घर हर व्यापारिक परिसर की किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी को सुंदर बनाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बिजली की ओवरहेड तारों को भूमिगत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य बिजली का उत्पादन करने के साथ साथ बिजली वितरण में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए मेगा स्वच्छता अभियान श्रमदान में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर के पास सफाई अभियान में श्रमदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 20 दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी शामिल होकर श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की।
दिल्ली में एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम एनडीएमसी एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी आरडब्ल्यू इस स्वच्छता अभियान में जुड़े।
वहीं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि इस अभियान में एनडीएमसी के लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी में मॉनसून से पहले बुनियादी संरचना को दुरुस्त करने और सड़क फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें समयबद्ध कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों को बेहतर बनाने का अभियान तभी सफल होगा जब सभी संबंधित एजेंसियां, जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस, नगर निगम और अन्य निकाय एकजुट होकर समन्वय के साथ काम करेंगे। इस दौरान मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नागरिकों से भी अपील की है कि वो शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एजेंसियों का सहयोग करें। राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली के सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर धरना दिया। इस दौरान श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हिस्से के पानी को पंजाब में ही रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसा राजनीतिक साजिश के तहत कर रहे हैं। इस संबंध में श्री सचदेवा और दिल्ली के सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी में उत्पन्न जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है, जिससे दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा विजया राहटकर ने आज राजधानी में आयोजित महिला महाजन सुनवाई के दूसरे दिन महिलाओं की शिकायतों को सुना। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एनसीडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जन सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं को उनके अपने शहर में ही उनके समस्याओं का समाधान देना है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा राष्ट्रीय थैलेसीमिया कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान थैलेसीमिया जागरूकता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह और राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष का विषय है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों के एकीकरण, रोगियों को प्राथमिकता, रोकथाम, प्रारंभिक निदान और निरंतर देखभाल के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में सभी स्टार्टअप फंड की प्रगति का आकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये बैठक द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए संभावनाओं की तलाश करने पर केंद्रित थी। श्री गोयल ने देश के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने में एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्मार्टफोन अब सिर्फ संचार का माध्यम न होकर विश्व की सूचना का प्रवेश द्वार और सशक्तिकरण का माध्यम बन चुका है। नई दिल्ली में आज 22वें भारत टेलीकॉम 2025 के उद्घाटन समारोह में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभर चुका है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष होगा जिसमें भारत अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई का पता लगाएगा। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर सिंह ने रॉकेट पहल के लिए अंतरिक्ष विभाग के नए मॉडल और प्रधानमंत्री गतिशक्ति स्वामित्व स्मार्ट सिटीज और अमृत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और ड्रोन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये तकनीकें रेलवे, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी एकीकृत की जा रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि पहला मानव रहित गगनयान मिशन वर्ष 2025 के अंत तक, जबकि मानव युक्त मिशन वर्ष 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और नारी शक्ति जब आगे बढ़ती है तो पूरा समाज सशक्त बनता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है। श्री गुप्ता ने माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वीमेंस के 58वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर कहा कि वर्ष 1967 में शुरू हुआ यह कॉलेज आज एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जर्मनी के लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता रेनस ग्रुप के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत में बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग क्षेत्र में तेज गति से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र साबित हुआ है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई क्यूआर कोड ने वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान अवसंरचना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। इसने पिछले वित्त वर्ष में 657.9 मिलियन की तुलना में 91.5% की वृद्धि दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़े के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड में उछाल के साथ ही क्रेडिट कार्ड लेन देन की वृद्धि दर में भी गिरावट आई और यह 7.94% पर आ गई। डेबिट कार्ड की संख्या मात्र 2.7% बढ़कर 991 मिलियन हो गई है। मार्च महीने में यूपीआई लेन देन में रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य में 25% और मात्रा में 36% की वृद्धि को दर्शाता है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई भारत में डिजिटल लेन देन का प्रमुख माध्यम बन गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज राष्ट्रीय राजधानी में साइकिलिंग और निशानेबाजी की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। तीसरे दिन आज खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कड़ी चुनौती पेश की।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजस्थान के आदित्य जाखड़ ने 1:06.67 के समय के साथ लड़कों की 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लड़कों की टीम स्प्रिंट 3 लैप्स स्पर्धा में झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता। लड़कियों की 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। इस बीच डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लड़कों की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में राजस्थान के मयंक चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। धैर्य पराशर ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वर्ग में प्राची शशिकांत गायकॉड ने स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक की तिलोत्तना सेन ने रजत और कर्नाटक की ही अनुष्का एच थोकुर ने कांस्य पदक जीता। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
राजधानी में दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलापुरी में एक विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। राजधानी में मॉनसून से पहले बुनियादी संरचना को दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। खेलो इंडिया में आज साइकिलिंग और निशानेबाजी की स्पर्धाएं आयोजित की गयी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।